Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Kumar ki kalpana ki gayi hai, aur us kalpit Kumar ke dwara sara लौकिक व्यवहार चल रहा है और उसी एक वस्तु में कुमारी की कल्पना की गई है और उसी कल्पित कुमारी द्वारा सारा व्यवहार चल रहा है। तम जीर्णो दंडे न वंचसी, उपनिषद का कहना है, हे परमात्मा, यहां तक कि तुम्हें केवल जवान स्त्री और जवान पुरुष या फिर कुमार और कुमारी इतका रूप ही पसंद है, ये बात नहीं। तुम जीर्णो दंडेन वंचसी, और एक हिसाब से कहा जाए तो प्रेमपुरी आश्रम में तो सबसे ज्यादा परमात्मा है। बात समझ आई कि नहीं? इस हिसाब से यदि कहा जाए तो प्रेमपुरी आश्रम में तो सबसे ज्यादा परमात्मा मिलेंगे। तुम जीर्णो दंडेन वंचसी, ये परमात्मा तुम्ही ही, तुमको पता नहीं क्या शौक चल पड़ी, तुमको क्या लहड़ चल पड़ी कि जब तुम जवान युवा युवती कुमार कुमारी स्त्री और पुरुष होकर चल रहे थे तो उसी में मस्ती लेते रहते, तुम्हें क्या ये शौक हो गया कि एक डंडा लेकर बूढ़ा होते होकर कांपते हुए हाथ पांव कपाते हुए प्रेमपुरी आश्रम में आने की तुम्हें क्या शौक चल पड़ी भाई? तुम जीर्णो दंडेन वंचसी, तुम जीर्ण होकर इस अवस्था में पहुंच चुके हो कि स्वयं खुद अपनी क्षमता से चलने की क्षमता भी ना हो, उस अवस्था में भी एक दंडे के सहारे से, दंडे को साथ में लेकर हाथ में लेकर उस दंडे के सहारे से तुम अंचसी चलते हो, तो आप देख लेना। तो सबसे ज्यादा तो बूढ़ों में ही वो परमात्मा व्यक्त हुआ है। तम जीर्णो दंडे न वंचसी, और आज ये दुर्भाग्य की बात है कि सबसे ज्यादा अपमान और तिरस्कार इन्हीं वृद्धों की होती है। हर व्यक्ति की शिकायत है, हर व्यक्ति का, हर वृद्ध स्वयं अपने की हुई सृष्टि से वह संतुष्ट नहीं हो रहा है, अपने ही पुत्र से वह संतुष्ट नहीं है, अपने ही बहु बेटी से वह संतुष्ट नहीं है, अपने ही पुत्र पौत्रियों से संतुष्ट नहीं है, तब वह अन्य के सहारा खोजता है, अन्यत्र आश्रित होना पड़ता है उसको। बात ध्यान रख लेना, अध्यात्म आज के समाजशास्त्री जितने आज सोच रहे हैं, इससे पहले ही हमारा अध्यात्म शास्त्र इससे पहले ही बहुत पहले ही सोच चुका था, कहा कि इन वृद्धों का कभी भी अपमान नहीं करना, ये तो साक्षात परमात्मा के रूप है। आप इन जवान युवा युवतियों को यदि कोई मदद कर भी लोगे, ये तो आज तुम्हारे द्वारा किए गए उपकार से उपकृत होंगे, लेकिन कल जाकर तुमको भूल जाएंगे, वो याद नहीं करने वाले कि फलाने के उपकार से मैं आज इस हैसियत में आया हूं, इस अवस्था में आया हूं, वो भूल जाएंगे वो लोग तो। लेकिन एक थोड़ा भी उपकार किसी वृद्ध को करोगे तो वह वृद्ध मरते दिन तक आपके उपकार को नहीं भूल सकता है, क्योंकि हर वृद्ध मृत्यु के नजदीक पहुंचा हुआ है, हर वृद्ध का शरीर के अभाव नजदीक पहुंचता जा रहा है, और वह मरते समय में आपके उपकार का यदि वह स्मरण करता हुआ उसका शरीर छूटेगा तो यही आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद सिद्ध होगा। मरते समय वृद्ध दो ही चीज दे सकता है और ज्यादा नहीं दे सकता है। मरता हुआ वृद्ध व्यक्ति, जवान यदि मरने लगेगा तो वो भी नहीं देगा। बात समझ गए? कोई यदि जवान मरने लगेगा तो वो आपको आशीर्वाद देने वाला नहीं है, जवान को आशीर्वाद देने की आदत ही नहीं है। लेकिन हर वृद्ध मरने अवस्था में आपको आशीर्वाद दे सकता है, दुआ दे सकता है, और सावधान ये रखना कि कहीं बद्दुआ भी दे सकता है। ये देने की चीज नहीं है दुआ और बद्दुआ, उसके हृदय से दुआ और बद्दुआ प्रकट हो सकती है, और कहीं आपके व्यवहार से, उसके हृदय से, उसके भावनाओं से दुआ प्रकट हुआ, आशीर्वाद प्रकट हुआ, तो आपके वर्तमान जीवन सुखमय आनंदमय जाएगा। और कहीं उसके हृदय में आपके व्यवहार द्वारा कोई आघात पहुंची, कहीं तिरस्कार या अपमान या उपेक्षा का भाव उसके हृदय में जगा, तो ख्याल रखना उसके हृदय से बद्दुआ निकलेगी। वो ये नहीं चाहता कि मैं बद्दुआ दूं, लेकिन निकल जाएगा। उसकी पीड़ा, उसकी आहत उसके रूप में परिणत हो जाएगा। तब यदि वह मरते समय में आपके प्रति उसकी विदेह भावना से बद्दुआ का भाव प्रकट हो गया, तो आपके लिए जीवन में सुख का अवसर प्राप्त होने वाला नहीं है, नहीं होगा। क्योंकि वृद्धों के आशीर्वाद ही परमात्मा का आशीर्वाद है। क्योंकि श्रुति कह रही है तुम जीर्णो दन्नेन वंचसी, तुम जीर्ण होकर हाथ में लकड़ी लेकर, ये आश्चर्य की बात है। उन वृद्धों ने आपको पैदा किया, उन वृद्धों ने आपको चैतन्य बनाकर समाज में प्रतिष्ठित की, और आपने ही सृष्टि अपने ही द्वारा पैदा किए हुए उन चैतन्य पुत्र पौत्र बहु बेटे इन सबों ने जब उसको आश्रय नहीं दिया, तो वह जड़ का आश्रय लेना पड़ता है उसको। जब कोई चैतन्य आश्रय नहीं दे रहे हैं, जिन चैतन्यों की सृष्टि हमने की, बड़ी उम्मीदों से हमने सृष्टि की, वही चैतन्य आज हमको आश्रय नहीं देते हैं, तो वो वृद्ध अंत में जड़ का आश्रय लेना पड़ता है, तो उसके हृदय में कितना दुख होगा, क्या सोचेगा वो? अपने ही तिरस्कार करते हैं तो दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है, तो उसके हृदय में क्या भावना जगेगी? तो ये मानव, ये समाजवाद हमारे वैदिक सनातन धर्म में पहले से ही था। इसलिए अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या यत्र व्यतिक्रमः चत्वारिम तस्य नश्यन्ति आयुर्वित्तम यशो बलम्। जिसको सम्मान करना चाहिए उसका यदि उस समाज में सम्मान नहीं होता है, जिसको सम्मान करने की आवश्यकता नहीं उसकी सम्मान होने लग जाती है, और जिसको सम्मान करना चाहिए वह उपेक्षित तिरस्कृत होकर बैठता है, तो उस सम्मान करने वालों के चार वस्तु स्वतः नष्ट हो जाते हैं। चार वस्तु आयुर्वित्तम यशो बलम उसके नष्ट होने लग जाते हैं। तम जीर्णो दंडेन वंचसी, हे परमात्मा तुम्ही ही जीर्ण होकर हाथ में लकड़ी लेकर तुम बड़े मुश्किल से चल रहे हो, तो ये भी तुम्हारा ही रूप है और सबसे मूर्त रूप है। क्योंकि उस वृद्ध ने संसार को देख चुका है, उस वृद्ध ने शारीरिक दृष्टि से जो वृद्ध हो चुका है, उसने संसार को देख चुका है, भोग चुका है, अनुभव कर चुका है। अब उसके हृदय में संसार की वासना नहीं है, और जिसके हृदय में संसार की वासना नहीं है वो ज्यादा शुद्ध व्यक्ति है। हालांकि युवा युवती भी इन मंत्रों के द्वारा परमात्मा के रूप हैं, लेकिन उन जो युवा युवतियां हैं वह संसार को भोगने की वासना उनकी समाप्त नहीं हुई है। वो तो हजार कामना और हजार वासनाओं को लेकर घूम रहे हैं, जी रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। और हम जो वृद्ध हो चुके हैं, हमारी अब एक ही वासना है। आपसे किसी से पूछा जाए कि आप शादी करना चाहोगे तो आप कहोगे हाँ है। आपसे पूछा जाए कि तुम क्या बढ़िया बच्चे एक दो पैदा करना चाहोगे तो कहेगा कोई हाँ, कोई वृद्ध कहेगा नहीं। लेकिन कोई युवा युवती पूछो कि तुम शादी करना चाहोगे तो हाँ अच्छा मिले तो करेंगे। आप कहोगे अभी अच्छा मिले तो करेंगे, आप नहीं कर सकते। धन कमाने की क्या वासना आपके अंदर है अभी? अपने लिए तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? संसार को आपने बहुत ज्यादा भोग चुके, अब भोगने की वासना नहीं है। तो आप यही कहोगे कि महाराज अब तो बस भगवान में मन लगे, सत्संग में मन लगे, भगवान में मन लगे, भक्ति में मन लगे, अब तो ये देह जिस तरह प्रारब्ध समाप्त तो हो, जब तक प्रारब्ध है तब तक ये देह रहे, भगवान की भक्ति करते हुए, सत्संग करते हुए, परमात्मा में वृत्ति लगते हुए ये देह छूट जाए, अब तो यही इच्छा है। इतनी शुद्धता किसमें विकसित हुई है? वृद्धों में। इसका मतलब क्या हुआ? यदि इन प्रक्रिया से यदि हमारा सिद्धांत तो सही है तो इन प्रक्रियाओं के द्वारा विचार करने पर यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा की अधिक अभिव्यक्ति, शुद्ध अभिव्यक्ति तो वृद्धों में स्पष्ट दिखने में आता है। वृद्ध कभी किसी को बद्दुआ दे नहीं चाहते, न नहीं चाहते, किसी का अशुभ संकल्प नहीं करना चाहते हैं, और बहुत दुखी और पीड़ित होकर बद्दुआ निकल जाए ये दूसरी बात है। अग्नि स्वयं धुआं निकालना नहीं चाहता है। बात समझ में आ गई? हम एक दृष्टांत दे रहे हैं। धुआं तो अग्नि को भी पसंद नहीं है, अग्नि स्वयं धुआं निकले ये नहीं चाहता, लेकिन अग्नि जहां अभिव्यक्त होता है, प्रकट हो जाता है, उन ईंधनों की योग्यता अनुसार धुआं निकल ही जाता है। निकलता है कि नहीं? किसी भी ईंधन में यदि तुम अग्नि लगाओ तो, यही तो गीता में कहा, सर्वारंभाई दोषण धूमे न अग्नि रिभावृता। ये अर्जुन, समस्त कर्म क्रिया जो भी कर्म है, सभी कर्म, सभी क्रिया, सभी आरंभ दोष से युक्त है, निर्दोष तो नहीं है। जैसे सभी अग्नि धुएं से युक्त है, वैसे सभी कर्म दोष से युक्त है, परंतु ईंधन की योग्यता अनुसार धुआं किस मात्रा में प्रकट होता है ये ईंधन में निर्भर करता है, अग्नि में निर्भर नहीं करता। आपको समझ में आ गया ना? आप यदि एकदम सूखी लकड़ी को जलाओगे तो धुआं कम निकलेगा, अग्नि तो उस सूखे लकड़ी में भी प्रकट होगा, अग्नि तो उस टायर में भी प्रकट होगा, रबड़ में भी प्रकट होगा, और टायर और रबड़ को जलाते हुए धुआं यदि ज्यादा निकलता है तो ये अग्नि का दोष नहीं है। किसका है? उस ईंधन का दोष है। और सूखी लकड़ी जलाते हुए धुआं कम निकलता है तो उस ईंधन की विशेषता है कि उससे धुआं कम निकले। तो ये आपकी विशेषता होनी चाहिए कि उन वृद्धों के हृदय से क्या भावना प्रकट होती है, उसको क्या भावना प्रकट कर सकते हो, किन परिस्थितियों में कौन सी भावना निकलती है। हम उन वृद्धों को बहुत ज्यादा पीड़ा दे रहे हैं, उन वृद्धों को ज्यादा उपेक्षा कर रहे हैं, ज्यादा अपमान कर रहे हैं, तो आपसे अपमानित हुए हुए उन वृद्धों के हृदय से आपके प्रति बद्दुआ निकलेगी ही निकलेगी। रबड़ जलाओगे तो धुआं ज्यादा निकलेगा ही निकलेगा। अग्नि ये नहीं कहता कि मैं इसमें से ज्यादा धुआं निकलाऊं, वो निकलेगा, उसका स्वभाव है। तो यही बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि वृद्धों की अपमान न हो हमारे समाज से। तम जीर्णो दंडे न वंचसी तुम जातो भवती विश्वतो मुख। कहां तक कहें परमात्मा, त्वम एव जातः। जगत में जितने भी पैदा हुए हुए पदार्थ हैं, चाहे वह भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे आदि दैविक हो, यदि कोई जातत्व है, प्रकट होनापना है, तो वे सब तुम्हारे द्वारा ही संभव हुआ है, बिना तुम्हारे से वे संभव नहीं हुआ है। यदि किसी एक बीज से अंकुर पैदा हुआ है, तो वह भी तुम्हारे द्वारा ही संभव हुआ है, तुम्हारे बिना संभव नहीं हुआ है। यदि किसी बादल से वर्षा हुई है, तो वो भी तुम्हारे द्वारा, जहां भी जाता उत्पन्न होना पना है, वे सबका आधार तुम हो, और तुम ही तत्त्व उपाधियों के द्वारा उत्पन्न होते रहे हो, और तत्त्व उपाधियों के द्वारा उत्पन्न होकर व्यावहारिक प्रयोजन को पूरा करते रहे हो। विश्वतो मुख माने सर्वभाव में विश्वतो मुख शब्द प्रयोग किया गया है। ये हो गया अध्यात्म। अब अधिभूत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नीलः पतंगो हरितो लोहिताक्षस तड़ित गर्भारितवः समुद्राः। हे परमात्मा, नीलः पतंगो, पतंग शब्द का प्रयोग करते हैं। नील पतंग एक वाक्य है, नील अलग और पतंग अलग नहीं है। नील पतंग ये भ्रमरे की विशेषता है। भ्रमर नीला होता है, नीले रंग का होता है, सामान्यतः काला जैसा दिखे तो भी वह चमक में नीलापना चमकता है, उसकी शाइनिंग देखोगे तो बिल्कुल नीला चमक होता है, इसलिए भ्रमर को नीला पतंग। पतंग इसलिए कहते हैं कि उसके जो पंख हैं, उसके द्वारा वह ऊपर और नीचे, नीचे और ऊपर, इस माध्यम से वह गमन करता है। पतत्री गमयति इति पतंगः, वो गिरता भी है और चलता भी है, उसका चलना ही उठना और गिरना है। पंखों की क्रियाओं से जिसकी गति हो, उसको पतंग कहते हैं। पतंग माने पंखों की क्रियाओं से जिसकी गति हो, वो पतंग। वो कैसा है? तो नील है। तो उपनिषद का कहना है कि हे परमात्मा, तुम नील भ्रमर बनकर लाल, हरे, नीले, पीले समस्त पुष्पों में विद्यमान जो मधुरता है, सार है, उसको ग्रहण करते हुए तुम भ्रमण करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये परमात्मा संसार में यदि कोई रूप लेकर भ्रमण करता है, तो उस भ्रमण का एक ही प्रयोजन से वह भ्रमण करता है, जगत में जहां सारता है उसको ग्रहण करने के लिए भ्रमण करता है। आपके पास परमात्मा आएगा, कल्पना करो कि आप एक फूल हो, कल्पना करो कि आप एक फूल हो, जैसे कि जहां फूल रहता है वहां भ्रमर घूमता रहता है, और जिसमें जिस फूल में ज्यादा मधुरता होगी उस फूल में वह ज्यादा रहेगा, उसी फूल के आसपास वो ज्यादा घूमेगा। आपने देखा होगा, देखने में तो अनेक रंग रूप के बड़े सुंदर है फूल, बैगनवेल है ना, बैगनवेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फूल उसमें मधुरता नहीं है, तो एक भ्रमर भी वहां घूमता हुआ नजर आएगा नहीं। और यदि कोई भ्रमर घूम भी रहा हो, तो वह मधुरता उसके अंदर की मधु खोजने के लिए घूमता है, और जब नहीं मिलता है तो वह चला जाता है, वहां बैठता नहीं है उसके आसपास में। तो आप मान लो कि आप एक फूल की तरह दिख रहे हैं, तो आपके आसपास परमात्मा की अभिव्यक्ति, परमात्मा की उपस्थिति सबसे ज्यादा कब होगी? जब आपके जीवन में मधुरता रूप अच्छे गुणों का आप विकास कर पाओगे। सद्गुणों का यदि आपके जीवन में विकास होगा, तो जितने ज्यादा सद्गुणों का विकास होगा, उतने ही ज्यादा नीला पतंगा वो परमात्मा आपके पास भ्रमर के रूप में उपस्थित होता रहेगा। भागवत में इसको रूपक के रूप में कितने सुंदर ढंग से समझाया गया है। आप लोगों ने भागवत बहुत पढ़ी है और सुना भी है। प्रेमपुरी आश्रम में महीने में एक दो भागवत तो होते ही रहते हैं, तो ये बहुत सुंदर बात है। भागवत में कई बार एक रूपक, वो रूपक कैसा है, भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से वृंदावन चले गए तो मथुरा में उनके जो साथी सगे सब जो प्रेमी थे उनको कहा कि तुम लोग रहो, मैं कुछ दिन के बाद आऊंगा। गए तो वो आए नहीं, और उनके वियोग में इधर गोपियां ब्रजवाला है बहुत दुखी हुई, बहुत पीड़ित है। तो एक बार जंगल बगीचे में वह सब एकत्र हुए हैं, भगवान ने विचार किया, देखते हैं जिसको ये चाहते हैं वो पहचानते हैं कि नहीं। तो परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण ने एक भ्रमर का रूप धारण कर लिया। भ्रमर का रूप धारण करके चले गए उसी बगीचे में, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सब फूलों को स्पर्श करते हुए, रसास्वादन करते हुए, उन ब्रजवाला है वो गोपी है जहां बैठकर कृष्ण के विरह की चर्चा कर रहे थे, वहां बार बार उनके आगे पीछे घूमते रहे। ये भागवत का प्रसंग है, रूपक है ये। और कहते हैं कि यहां बड़ा सुंदर रूपक बनाया, उसी समय में उद्धव भी वहां पहुंच गए। उन लोगों ने उद्धव को तो देखा और उद्धव को देखकर भ्रमर को प्रति लक्ष्य करके बार बार प्रताड़ना की, अरे भ्रमर तो यहां क्यों आ रहा है, तुझे जहां रस मिलता है वहीं चले जा, हम तो ऐसे भी तुम कृष्ण वियोग से सूख चुके हैं, अब यहां क्या रस मिलेगा तू आता है। वास्तव में एक रूपक है भागवत के, भ्रमर के, कृष्ण भ्रमर बनकर उन गोपियों के पास घूम रहे हैं, गोपियां उनको उलाहना, उन कृष्ण को उलाहना दे रही है कि जब तुमने हमारा परित्याग कर दिया तो हम यही मान चुके हैं कि हमारे में कोई रस नहीं है, इसीलिए परित्याग किया है। तो हमारे में रस नहीं है तो फिर क्यों घूम घूम के आता है, जहां रस मिलता है वहीं चले जा। सच परमात्मा को कृष्ण भ्रमर रूप बहुत पसंद है, भागवत में भी वही है, श्रुति ने भी यही कहा है। नीला पतंगो हरितो लोहिताक्ष हरिता, ये परमात्मा कहां तक बतावे कि जो हरा सुगा है, तोता है, यह भी तुम ही हो, तुमको हरा रंग में पसंद आ गया इसलिए पूरे हरे हो गए, तुमको नीला रंग पसंद आ गया तो पूरे के पूरे नीले हो गए। और क्या कहें, लोहिताक्ष लाल आंख वाले होकर आप विचरण करते हो। लोहिताक्ष का अर्थ होता है कोयल, चातक, चातक के आंख लाल होते हैं, शरीर पूरा का पूरा सफेद है और आंख बिल्कुल लाल है। चातक इस संसार में क्या क्या खोजता है, कितने वस्तुओं को खोजता है आप बता सकते हैं चातक? चातक का एक ही लक्ष्य है और कुछ नहीं है, वो है केवल एक बूंद पानी। आपको बढ़िया पकवान बनाकर सामने रख दोगे तो वो उस पकवान, उस मिठाई, उस मिष्ठान ना, उसको नहीं खोजता है। चातक एक ही वस्तु को खोजता है, वह है पानी। एक बूंद पानी के लिए चातक तड़पता है। परमात्मा आपसे एक ही वस्तु खोजता है, वह है भावना, वह है भक्ति, उसका है कहते हैं भावना, उसका है श्रद्धा, उसके अलावा वो कुछ नहीं खोजता है। आपकी धन नहीं खोजता, आपकी संपत्ति, आपका वैभव, आपका रूप, आपका यौवन, आपकी विद्या, आपकी कला, आपके रूप, परमात्मा ये सब नहीं खोजता है। भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक विद्वानों ने कहा है, विद्या गजेंद्रस्य कहा, हाथी की क्या विद्या थी, कुब्जाया कमनीय रूपम अधिकम, कुब्जा का क्या रूप था, क्या यौवन था कुब्जा का, न कोई यौवन था न कोई रूप था, हाथी के पास न कोई विद्या थी, सुदामा के पास न कोई धन था, प्रहलाद के पास न कोई यौवन था, प्रहलाद के पास यौवन, ध्रुव के पास कोई यौवन था, तो फिर इनके प्रति परमात्मा इतने प्रसन्न क्यों हुए। भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणेर भक्ति प्रियो माधव, वो परमात्मा तो केवल एक भाव से, भक्ति से प्रसन्न होता है, वो हर व्यक्ति के संसार में सभी व्यक्तियों से एक ही वस्तु को चाहता है, वो है भक्ति। ये चातक के जैसा स्वभाव है वैसे ही उस परमात्मा का स्वभाव है, ये रूपक है, रूपक के माध्यम से परमात्मा को यहां समझाया जा रहा है कि हे परमात्मा तुम लोहिताक्ष, सारा शरीर काला है, चातक के सारा शरीर काला है परंतु आंख लाल है, उस लाल आंख से वह चातक क्या खोजता है, मोती, जल, इसी तरह वो परमात्मा लोहिताक्ष होकर आपसे क्या खोजता है, क्या चाहता है, भक्ति और भाव चाहता है, इसके अलावा उसको कोई वस्तु आपसे अपेक्षा नहीं रहे। नीला पतंगो हरितो लोहिताक्षस तड़ित गर्भ, ये तड़ित गर्भ का शब्द का अर्थ होता है बादल, जिसके गर्भ में तड़ितपना यानी चमकपना है, ये तड़ित माने आज सुबह ही बहुत जोर से गर्जना हुई थी, ये परमात्मा का रूप है तड़ित गर्भ, ये आकाश के जितने भी बादल हैं तड़ित गर्भ कहलाते हैं, इनके गर्भ में तड़ित है, चड़कन है, आवाज है, ये आपस में जब टकराते हैं तो ध्वनि होती है। तड़ित गर्भ बाद बारिश, हमेशा गर्मी से तपा हुआ उस पृथ्वी को शीतलता प्रदान करने के लिए है, पृथ्वी सूख कर एकदम नीरस हुआ हुआ पृथ्वी को अपने न्यूछावर के माध्यम से बादल, अपने अनुग्रह के माध्यम से सस्यशालिनी पृथ्वी, सस्यशालिनी हरा भरा बनाकर अनेक वनस्पतियों से युक्त बना देने का काम बादल का है। इसी प्रकार से परमात्मा तड़ित गर्भ है, ऋतवः वसंतादि ऋतु, ये भी तुम ही हो, ये सब अधिभूत है। समुद्राः, ये जो समुद्र उफान हो रहा है यही उस परमात्मा का रूप है, समुद्र उपाधि में वो परमात्मा विद्यमान है, बादलों उपाधि में वही परमात्मा विद्यमान है, वसंतादि ऋतु के उपाधि में वही परमात्मा सर्वत्र उन वृक्षों को नया जीवन देता हुआ नव पल्लव और नव पुष्प और नव फल आदि आदियों से युक्त करता हुआ वह बसंत उपाधि में सर्वत्र विद्यमान है। अनादिमत्तम विभुत्ते न वर्तसे, अनादि ये सब आदिमत हैं, जितने भी आदिमत उपाधियां हैं उन आदिमत उपाधियों में वह अनादि होता हुआ आदिमत उपाधियों में प्रकट होता रहता है, वो आदि वाला तो नहीं है लेकिन जितने भी आदि वाला हैं उनमें वो अनादि विद्यमान है। अनादिमत्तम विभुत्तेन वर्तसे, सर्वत्र व्यापक होकर वो रह रहा है। यतो जातानि भुवनानि विश्वाहा, जिससे सारा भुवन, सारा विश्व, 14 लोकात्मक ब्रह्मांड और उस ब्रह्मांड के अंतर्गत के सारे प्राणी, सारे भौतिक, आध्यात्मिक, अधिदैविक और आदि भौतिक सारे पदार्थ उसी से अस्तित्व में आए हुए हैं। ये तो जातानि भुवनानि विश्वार्थक यतः माने जिससे, जातानि माने अस्तित्व में आए हुए हैं ये सारा विश्व। और क्या है कल देखेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।